बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दुरूद व सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंदाज़े जहाँ के साथ मोहम्मद मेहदी शराफत हाजिर है। हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir और ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir। और अंदाज़े जहाँ में आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है यूक्रेन का बहरान, तो लीजिए मुलाहिज़ा फरमाइए अंदाज़े जहाँ। जी हाँ नाज़रीन, यूक्रेन का बहरान काफ़ी शिद्दत अख्तियार कर गया है। यूक्रेन में शोरिश के ज़रिए यांकोविच की हुकूमत ख़त्म किए जाने और मगरिब के हिमायत याफ्ता अबूरी हुकूमत के क़याम के बाद ख़ुद मुख्तार जमहूरिया क्रीमिया ने यूक्रेन से अलाहदगी का ऐलान कर दिया। क्रीमिया की पार्लियामेंट ने यूक्रेन से अलग होने और रूस से इल्हाक का बिल पास किया और 16 मार्च की तारीख रेफरेंडम के लिए मुअय्यन की। चुनांचे क्रीमिया में यूक्रेन से अलाहदगी के लिए इतवार को रेफरेंडम कराने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और क़राइन व शवाहिद बताते हैं कि क्रीमिया के अवाम रूस से इल्हाक के हक में वोट देंगे। यही वजह है कि अमेरिका और उसके यूरोपीय इत्तेहादियों ने इस रेफरेंडम को गैर कानूनी करार देते हुए ऐलान किया है कि वो इसके नतायज को तस्लीम नहीं करेंगे। उन्होंने इसी के साथ रूस से रेफरेंडम रुकवाने का मुतालबा किया है और रेफरेंडम होने की सूरत में रूस को पाबंदियाँ लगाने की धमकियाँ तसलसल के साथ दी जा रही हैं। अमेरिका और यूरोपीय ममालिक रूस पर यूक्रेन में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि रूस यूक्रेन के मौजूदा हालात का जिम्मेदार अमेरिका और यूरोपीय मुल्कों को करार देता है। आज के प्रोग्राम में हम पहले जज़ीरा नुमाए क्रीमिया में मुजव्वज़ा रेफरेंडम के बारे में गुफ्तगू करेंगे कि इस रेफरेंडम की कानूनी हैसियत क्या है, यूक्रेन से जज़ीरा नुमाए क्रीमिया के इल्हाक की हैसियत क्या थी, क्या क्रीमिया को यह हक दिया गया था कि वो जब तक चाहे यूक्रेन के साथ रहे और जब यहाँ के आवाम चाहें यह इल्हाक ख़त्म कर दिया जाए, रूस के लिए क्रीमिया की हैसियत क्या है, मगरिब अमेरिका और यूरोप का इस खित्ते में मफाद क्या है, क्या वो यूक्रेन के बहरान के मसले में रूस के साथ बराह रास्त तसादुम तक जाने की पोजिशन में हैं, और रूस और मगरिब के मौजूदा तसादुम के आलमी हालात और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। लेकिन पहले हमारी रिपोर्ट।
अमेरिका और रूस के दरमियान यूक्रेन के मसले पर कशीदगी जारी है, जिसकी वजह से यूक्रेन के बहरान के हल की भी कोई सूरत नजर नहीं आ रही है। हालिया दिनों में अमेरिकी सदर बाराक ओबामा ने रूस पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन के जजीरा नुमा क्रीमिया से अपने फौजी वापस बुलाए और क्रीमिया में रूसी निजात शहरियों के तहफ्फुज के लिए वहां एक निगरान मिशन तैनात कर दिया जाए। अमेरिकी सेनेटरों ने भी रूस के खिलाफ शदीद पाबंदियां आयद करने के लिए एक बिल पेश किया था, जबकि यूक्रेन के मसले पर अमेरिका के मौजूदा और साबिक हुकाम के मुख्तलिफ बयानात भी सामने आ रहे हैं और इस तरह के तमाम बयानात में यूक्रेन के बहरान का जिम्मेदार रूस को करार देने की कोशिश की जा रही है। उधर अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने भी यूक्रेन के हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए इस मुल्क के बहरान के लिए पुरअमन राय हल की अहमियत पर जोर दिया है। इसी दौरान रूसी फौज ने बताया है कि उसने मंगल के शब बैनुल बर्रे आजमी बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। अमेरिका रूस पर क्रीमिया में फौजी तैनात करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए इसे मास्को की जारियत करार देता है, जबकि अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा जॉन कैरी ने एक बार फिर यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव जाकर अबूरी हुकूमत के ओहदेदारों से मुलाकात की है और रूस के मुकाबले में यूक्रेन के सब्र की खूब तारीफ की है। अमेरिका का इल्ज़ाम है कि रूस हमसाय मुल्कों पर दबाव डालने के लिए क्रीमिया में ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि रूसी फौजियों को अभी तक यूक्रेन में भेजने की जरूरत नहीं है, ताहम रूस को मशरकी यूक्रेन में शहरियों की हिफाजत के लिए तमाम जराए इस्तेमाल करने का हक हासिल है। रूसी सदर ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत केव में सदर विक्टर यानुकोविच को माजूर करने के इकदाम को गैर आइनी बगावत और ताकत के जोर पर इख्तदार पर कब्जा करार दिया था। यूक्रेन के मामले पर दरअसल मगरिब और अमेरिका ने जो रवैया अख्तियार किया है उससे ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि इस बहरान का जिम्मेदार रूस है और कोई भी यूक्रेन के बहरान में मगरिब और अमेरिका के किरदार का जिक्र नहीं करना चाहता, जबकि ये एक हकीकत है कि यूक्रेन में बहरान में शिद्दत उस वक्त आई जब हुकूमत और मुखालफीन के दरमियान इत्तेफाक राय होने के बावजूद मुखालफीन ने पार्लियामेंट पर कब्जा कर लिया और सदर यानुकोविच को माजूल कर दिया। امریکہ اور مغرب یوکرین میں اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے کوشاں ہیں، تاہم روس کے لیے یوکرین بہت سے وجوہات کی بنا پر انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور روس کسی بھی قیمت پر اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا۔ حالانکہ یوکرین میں زیادہ حالات خراب ہونا خود روس کو بھی پسند نہیں ہوگا۔
یا ناظرین، یوکرین کے تعلق سے ہماری رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ ہمارے آج کے پروگرام میں دہلی اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ہندوستان کے سینئر سیاستداں اور تجزیہ نگار شمیم فیضی، لندن سے پروگرام میں شرکت کریں گے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر علی جعفر زیدی، اور اسلام آباد سے اسکائپ کے ذریعے آج کے پروگرام میں شامل کیا جائے گا پاکستان کے ممتاز دانشور اور تجزیہ نگار ڈاکٹر قندیل عباس کو۔ گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں ڈاکٹر علی جعفر زیدی سے جو لندن اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ زیدی صاحب السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
زیدی صاحب، یوکرین کے تعلق سے حالات آپ کے پیش نظر ہیں۔ یوکرین کے مشرقی اور جنوبی شہروں میں لڑائی شروع ہو گئی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ خارکوف میں کم سے کم 2 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو چکے ہیں۔ یہ صورتحال یوکرین کو کس طرف لے جا رہی ہے؟
جی، یوکرین کی صورتحال بہت ہی تشویشناک ہے، بین الاقوامی سطح پہ بھی اور ویسٹ کے لیے بالخصوص، اور روس کے لیے اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وہاں یوکرین میں جو اس وقت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس کے پیچھے بے شمار فیکٹرز ہیں، اور اس میں بے شمار پیسہ ڈالا گیا ہے۔ پوٹن نے جب سیریا کے ایشو پر امریکہ کی لائن کو ٹو کرنے سے انکار کیا، تو اس کے بعد پوٹن کو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس کی جو سزا ہے وہ امریکہ اور ویسٹ دینا چاہتا تھا۔ یوکرین میں ہمیشہ ہی کرپٹ گورنمنٹ رہی، یوکرین میں ہمیشہ ہی اقتدار میں جو لوگ تھے وہ رشین سپیکنگ نہیں تھے، لیکن یہ سیریا پر پوٹن کا امریکہ کا ساتھ نہ دینا، اس کے بعد یوکرین کی صورتحال کو ڈیولپ کیا گیا۔ سنائپرز بلائے گئے، حتیٰ کہ القاعدہ چیچن سے لوگ بلا کر وہاں پر جو ڈیمونسٹریشنز تھیں ان پہ حملے کروائے گئے، اور اس وقت یوکرین میں جو لوگ قابض ہیں وہ نیو نازیز اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے 2 سلوگنز ہیں اور جس پہ وہ عمل کر رہے ہیں، کہ ایک تو رشین سپیکنگز کو وہ یوکرین میں رہنے کا حق نہیں دینا چاہتے، اور دوسرا وہاں جتنے جیوز ہیں ان پر حملے شروع ہو چکے ہیں۔ تو یوکرین کی صورت بجائے خود بہت ہی گھمبیر ہے، اور ویسٹ چاہتا یہ ہے کہ یوکرین میں اس کا عمل دخل ہو جائے اور ایسی حکومت قائم ہو جو کہ یورپین یونین کی طرف ہو، اور یوکرین نیٹو کا حصہ بنے، اور نیٹو کی جو افواج ہیں وہ وہاں روس کے مقابلے پر، روس کے سامنے کھڑی کر دی جائیں، اور روس کو گھیرنے کی اصل میں بات ہے جس کے لیے یہ ساری ایفرٹ ہے، اور اس میں بے شمار پیسہ گیا ہے، بے شمار اسلحہ گیا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ شاید اب کریمیا الگ ہو جائے گا۔ کریمیا کا ریفرینڈم کل ہونے والا ہے، جس میں کریمیا میں کوئی 80% لوگ جو ہیں رشین سپیکنگ ہیں، اور وہ یقیناً روس کے ساتھ جانا چاہیں گے، اور ویسٹ اور امریکہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ تو ایک بہت بڑی ٹینشن ہے اس وقت جو یوکرین میں ڈیولپ ہو چکی ہے، اور اس سے اگر یہ بات آگے بڑھی تو پوری دنیا کا جو امن ہے وہ خطرے میں جا سکتا ہے۔
بہت بہت شکریہ۔ اور ناظرین، چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو، جہاں ہندوستان کے سینئر سیاستداں اور ممتاز تجزیہ نگار شمیم فیضی صاحب موجود ہیں۔ فیضی صاحب السلام علیکم۔ جی جناب فیضی صاحب، جزیرہ نمائے کریمیا میں اتوار کو یوکرین سے علیحدگی اور روس سے الحاق کے لیے ریفرنڈم ہونے والا ہے۔ اس درمیان امریکہ اور یورپ نے اس ریفرنڈم کو غیر قانونی اعلان کیا ہے، اور روس سے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ریفرنڈم رکوائے۔ जबकि रूस का कहना है कि जिस तरह कोसोवो के लोगों ने 2008 में एक रेफरेंडम के जरिए सर्बिया से अलाहिदगी अख्तियार की, इसी तरह क्रीमिया के अवाम को भी यह हक हासिल है कि वो रेफरेंडम के जरिए अगर चाहें तो यूक्रेन से अलग हो जाएं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी फैजी साहब की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही थी। जैदी साहब, क्रीमिया में जो रेफरेंडम कल होने वाला है उसकी कानूनी हैसियत क्या है?
देखिए, क्रीमिया जो है वो 1954 तक तो रूस का हिस्सा रहा है, यानी वो रूस की का फिजिकल पार्ट था, कानूनी पार्ट था। उसके बाद क्रीमिया में जो लोग बसते हैं उनके कल्चरल टाइज हैं रशिया के साथ, उनके साथ उनकी जबान, उनकी यानी इस स्टिल अलग होते हुए भी क्रीमिया कल्चरली एंड पॉलिटिकली रूस का हिस्सा ही है। मैं खुद क्रीमिया कई बार जा चुका हूँ और वहाँ के लोग रूस के साथ हैं। अब उसकी कानूनी हैसियत ये है कि बिल्कुल जैसे कि कोसोवो में अल्बेनियंस जो थे वो 80% उन्होंने वोट दिया और उसके बाद वो वेस्ट ने उसको कबूल किया और कोसोवो में जो रेफरेंडम है उसको पूरी दुनिया में बल्कि सराहा गया। लेकिन यही वेस्ट अब क्रीमिया के जो लोग हैं जिनकी 80-85% आबादी रूसी जबान, रूसी कल्चर और रूसी सकाफती एतबार से उनका हिस्सा है, उसके रेफरेंडम के अगेंस्ट है, क्योंकि वेस्ट को ये रेफरेंडम सूट नहीं करता। और क्रीमिया में रूस की ब्लैक सी में उनके नेवल बेसिस हैं, वहाँ इनके पुरानी आर्मी के यानी फिजिकल मौजूदगी है क्रीमिया में रूस की। तो कानूनी एतबार से तो अगर हम यानी कानून की एथिक्स के हवाले से जाएं तो अगर कोसोवो में रेफरेंडम वेस्ट को एक्सेप्टेबल है तो क्रीमिया का रेफरेंडम जो भी वो फैसला करें अवाम रूस के हक में जाना चाहें, रूस के खिलाफ जाना चाहें, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और मेरा ख्याल है रूस ने भी यही स्टैंड लिया है कि जो भी फैसला क्रीमिया के लोग करेंगे हम उसको कबूल करेंगे, और वेस्ट को भी ये बात कबूल करनी चाहिए। लेकिन चूंकि वेस्ट को ये सूट नहीं करता इसलिए वो उन्होंने स्टैंड लिया है। यूक्रेन की सूरत हाल में वेस्ट पूरी तरह इन्वॉल्व है, उसको अनस्टेबल कर रहा है, उस सूरत में ये अपने जो अहदाफ हैं उसको अचीव करना चाहते हैं, और अहदाफ बुनियादी तौर पे रूस को घेरना है। और यूक्रेन अगर नेटो का पार्ट बनता है तो फिर वहाँ पर नेटो की मौजूदगी होगी, और ये रूस मैं नहीं समझता कि किसी भी सूरत पे इस बात पे आमादा हो या इस बात को एक्सेप्ट करे। और इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि चीन भी इस सूरत हाल को एक्सेप्ट नहीं करेगा।
शमीम फैजी साहब से हमारा राबिता बरकरार हो गया है। जी फैजी साहब, क्रीमिया में इतवार को रूस से इल्हाक के लिए रेफरेंडम होने जा रहा है, इस रेफरेंडम की कानूनी हैसियत क्या है?
जी जी मैं कानूनी हैसियत को इस नुक्ते नज़र से देखता हूँ
जी
कि यूक्रेन में जो हुकूमत की तब्दीली हुई
जी
या इस वक्त जो आर्जी इंतज़ामिया वहाँ पर कायम है,
जी
ये बजाते खुद गैर कानूनी है, क्योंकि यूक्रेनी के चुने हुए सदर के खिलाफ बैरूनी माली और असलाह की इमदाद के जरिए एक मुहिम चलाई गई और इस मुहिम के जरिए पार्लियामेंट पर कब्जा करके उन्हें इकतदार से बेदखल किया गया। इसलिए जब उस पूरे मुल्क में एक गैर कानूनी हुकूमत कायम है तो उसके मुकाबले में उस मुल्क के एक खित्ते के लोग जो सकाफ़ती और तहजीबी लिहाज से उनसे मुख्तलिफ़ हैं उन्हें हक़ खुद इख्तियारी हासिल होना चाहिए, और उसके लिए अगर वो किसी रेफरेंडम के ज़रिए अपनी राय जाहिर करती हैं तो इसे दुनिया में दुनिया के तमाम मुल्कों को कबूल करना चाहिए। जैदी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि कोसोवो में तो रेफरेंडम अमेरिका और उसके मगरबी हलीफों को के लिए काबिल कबूल था, क्योंकि वहाँ के हालात के मुताबिक उन्हें जाग किया कि कुछ इलाकों में अपने हाथ पैर फैलाने का मौका था। आज जब अमेरिका खुले तौर पर रूस को घेरने की पॉलिसी पर अमल कर रहा है, तो उसने असल में यूक्रेन में जो आमनेहाद अवामी बगावत मुनज़्ज़म की, वो दरअसल अमेरिका के रूस को घेरने के आलमी मंसूबे का हिस्सा है। और ऐसी हालत में अगर उस मुल्क के एक हिस्से के अवाम अपनी राय का इजहार करते हैं, तो न सिर्फ अमेरिका को बल्कि दुनिया को भी उनके इस फैसले को कबूल करना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जैदी साहब, अमेरिका ने रूस से मुतालबा किया है कि वो यूक्रेन की मौजूदा जो अबूरी हुकूमत है उसके साथ मुज़ाकरात के ज़रिए अपने अख्तिलाफात को हल करें। रूस का कहना है कि जो मौजूदा अबूरी हुकूमत है वो रूस की नज़र में गैर कानूनी है, उसको वो तस्लीम ही नहीं करता है, और उसकी नज़र में अब भी यानकोविच यूक्रेन के मुंतखब और कानूनी सदर हैं। मौजूदा जो अबूरी इंतज़ामिया है या अबूरी हुकूमत है यूक्रेन की, उसकी कानूनी हैसियत क्या है?
जी, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। यांकोविच इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे और उसमें ये प्लांट करके उनको हटाया गया, दहशतगर्दी गुंडागर्दी करके, मतलब पार्लियामेंट पे ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया, कुछ इमारतों पर कब्ज़ा करके और लोगों को गोलियों से मारा गया, और अपने ही लोगों को उन्होंने, यानी अपोजिशन, ताकि ये दुनिया को नज़र आए कि वहाँ बहुत बदनमनी और बहुत ही कत्लो गारत हो चुकी है, इसके लिए स्नाइपर्स भी बाहर से बुलाए गए, और वहाँ जितने इस वक्त ये न्यू नाजीज हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं, और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है इस वक्त जो वहाँ पर हुकूमत है। और इंटरेस्टिंगली जो ही ये हुकूमत कायम होती है, एकदम से जॉन कैरी भी पहुँच जाते हैं और पूरा यूरोप उसको, उनको, इस हुकूमत को तस्लीम भी कर लेता है, और एकदम तमाम दौलत के जो ख़जाने हैं वो खोल दिए जाते हैं हेल्प करने के लिए कि हम वहाँ पर जो मईशत है उसको हम ठीक करेंगे वगैरह वगैरह। तो उससे नज़र आता है कि वेस्ट का कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है और किस तरह से वहाँ की हुकूमत को उन्होंने टॉपल किया है और अपनी मर्ज़ी की वहाँ पर वो हुकूमत लाना चाहते हैं। और रूस चूंकि बिल्कुल रूस की नेबरिंग उस पर है, और रूस कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि एक गैर कानूनी हुकूमत कायम करके और रूस के गले पर आप एक घंटी बांध दें नाटो की और वो उसको बर्दाश्त करे, ये हो नहीं पाएगा। और इसमें दुनिया का जो, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, अमन ख़तरे में पड़ सकता है। रूस के अपने अंदर के लोग जो हैं उनके यहाँ जुलूस निकल रहे हैं, बहुत बड़ी डिमॉन्स्ट्रेशंस हुई हैं इस सारे इशू पर, और वो क्रीमिया के अवाम के भी साथ हैं, और रशियन स्पीकिंग जो आबादी है यूक्रेन में वो बहुत बड़ी आबादी है, वो इस वक्त ख़तरे में है। तो ये जो गैर कानूनी हुकूमत है, इसके कोई ना रूट्स हैं अवाम में, ना इसकी कोई कानूनी हैसियत है, और ये इन्होंने आते ही वहाँ से अरसे से जो राइज ज़बान थी रशियन लैंग्वेज, उसको उन्होंने कहा कि इसको आज से हम बिल्कुल ख़त्म करते हैं, और उसके बाद उन्होंने उस पर रिएक्शन हुआ। वहाँ पर जो रशियन स्पीकिंग आबादी है वो अपने आप को गैर महफूज समझ रही है, सैनिगॉग्स पर हमले होना शुरू हो गए हैं। तो ये गैर कानूनी हुकूमत इसीलिए लाई गई है ताकि यूक्रेन अफरा तफरी का शिकार हो जाए, और उस अफरा तफरी में जो चैम्पियन हैं बाहर बैठे हुए, जो जमहूरियत के अलम्बरदार अपने आप को कहते हैं, और जो इन्होंने एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट को वहाँ गुंडागर्दी के ज़रिए हटवाया है, उसके हक में मामला चले जाएं और वो कंट्रोल करें, वहाँ बैठकर डिक्टेट करें कि रूस कैसे बिहेव करे, रूस को क्या करना चाहिए, यूक्रेन के अवाम को क्या करना चाहिए, क्रीमिया को क्या करना चाहिए। मतलब ये ये हक जो है वहाँ के अवाम की बजाय वेस्ट और यूरोपियन यूनियन अमेरिका ये अपने हाथ में लेना चाहता है, और ये बिल्कुल एक यानी नेकेड गुंडागर्दी है। इसको इंटरनेशनल टेररिज्म कहना चाहिए, ये रियासती दहशतगर्दी है, आलमी रियासती दहशतगर्दी जो कि अमेरिका और वेस्ट ने वहाँ पर मुसल्लत की है, और वहीं नहीं दुनिया के और ममालिक में भी ये काम कर रहे हैं और धड़ल्ले से कर रहे हैं। और सूरत यह है चूँकि दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड बन गई थी जिसका इंचार्ज अमेरिका बन गया था, लेकिन अब वो पूरी दुनिया उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही उस तरह से, तो हालात जो हैं यूक्रेन में बिल्कुल लाकानूनीत की तरफ हैं और ये हुकूमत जो है बिल्कुल गैर कानूनी है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया फैजी साहब। जनाब क्रीमिया के लिए तो जो हालात बता रहे हैं अंदर से जो रिपोर्टें मिल रही हैं उनसे पता ये चल रहा है कि कल का रेफरेंडम क्रीमिया को यूक्रेन से अलग कर देगा, लेकिन यूक्रेन के जो दीगर जनूबी और मशरकी इलाके हैं वहाँ भी मौजूदा अबूरी हुकूमत के खिलाफ आवाम ने मुजाहरे शुरू कर दिए हैं, वहाँ अनरेस्ट बदमनी और झड़पों का सिलसिला शुरू हो गया है, तो क्रीमिया को छोड़ के यूक्रेन के जो बकिया इलाके हैं उनका क्या बनेगा?
देखिए कानूनी तौर पर तो यूक्रेन बग़ैर क्रीमिया के एक जमहूरिया के तौर पर या एक मिमलिकत के तौर पर होगा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यनकोविच के ख़िलाफ़ जो तहरीक शुरू की गई थी उस तहरीक का बुनियादी सवाल या तो यूरोपीय यूनियन के माशी फार्मूले को कबूल करना था या यूक्रेन की माशी हालत को सुधारने के लिए रूस के साथ जाना चाहिए था। यनकोविच ने रूस के साथ जाने का इशारा दिया, उसके बाद से ही सारी मग़रबी दुनिया यूक्रेन के इस सदर के ख़िलाफ़ बगावत मुनज़्ज़म करने में लग गई। अवाम यूक्रेन के यानी क्रीमिया को छोड़कर दो हिस्सों में बटे हुए थे, लेकिन गैर कानूनी तौर पर पार्लियामेंट पर कब्ज़ा करके चुने हुए सदर को हटाने के बाद आर्दी या अबूरी इंतज़ामिया ने अपनी मनमानी जिस जंग से शुरू की उससे एक बात तो साफ़ हो गई कि ये अबूरी इंतज़ामिया इसलिए कायम किया गया है कि ये यूरोपीय यूनियन या साफ लफ्ज़ों में अमेरिका की ताबेदारी करे, और यूक्रेन के अवाम की, मैं गैर रूसी यूक्रेनी अवाम की बात कह रहा हूँ, ये उनकी अपनी तारीखी रवायात के ख़िलाफ़ है कि वो अमेरिका की ताबेदारी कबूल करें, और इसीलिए अब खुद बाकी वांडा यूक्रेन में यानी मशरकी और जनूबी यूक्रेन में इस वीरी इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भी अवामी तहरीक है, और ये अवामी तहरीक का पस मंज़र वो माशी पैकेज है जो यनकोविच लाना चाहते थे और जो यूरोपीय यूनियन के ज़रिए अमेरिका थोपना चाहता था। इसलिए इसमें कोई बहुत हैरत अंगेज़ बात नहीं है कि यूक्रेन के अंदर भी अब वो लोग जो यनकोविच के हामी थे वो मैदान में उतरेंगे और इससे लाकानूनियत बढ़ेगी। इसलिए बेहतर ये होगा कि अक्वाम मुत्तहदा इस मामले में मुदाखलत करे और अमेरिका जिस तरह से वहाँ एक गैर कानूनी हुकूमत को बरकरार रखना चाहता है उसे ख़त्म किया जाए, इस अबूरी इंतज़ामिया को ख़त्म किया जाए, चुनी हुई हुकूमत के सदर को वापस लाया जाए और चुनी हुई पार्लियामेंट के ज़रिए कोई भी फैसला किया जाए, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन है जब पुरअमन गुफ्तगू के ज़रिए मसाइल को हल करने की कोशिश की जाए। लेकिन तजुर्बा ये बताता है कि अमेरिका को जहाँ जो उसके नाम नेहाद कौमी मफादात में नज़र आता है वो उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। सो कॉल्ड अरब स्प्रिंग, बहार अरब का पूरा नज़ारा हमारे सामने है कि इजिप्ट में क्या हुआ, किस तरह से चुनी हुई हुकूमत को ख़त्म किया गया और अब अमेरिका की मदद से वहाँ फिर से फौजी आमरीत कायम करने की पूरी कोशिश है। तो पहले अवामी तहरीक की हमायत के नाम पर अदम इस्तेकाम पैदा किया गया और फिर जब अपनी मनपसंद हुकूमत कायम हो जाए तो फिर जमहूरियत की दुहाई दी जाए। यही खेल अमेरिका आज यूरोप में और ख़ास तौर से यूक्रेन में खेलने की कोशिश कर रहा है। इसे अमेरिका के उस बड़े खेल का हिस्सा मानना चाहिए जिसका शिकार इराक, अफगानिस्तान, कई अरब ममालिक और लातिनी अमेरिका में ब्राज़ील जैसे मुल्क बने हैं।
जी जैदी साहब, जनाब अमेरिका और यूरोप तसलसल के साथ रूस को पाबंदियां लगाने की धमकी दे रहे हैं, जबकि बहुत से तजिया निगारों का कहना यह है कि अगर पाबंदियां लगती हैं तो पहला नुकसान यूरोप को होगा। खुद यूरोपी रहनुमाओं ने भी इसका एतराफ किया है कि पाबंदियां अगर रूस पर लगाई जाती हैं तो इसका नुकसान उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसके बावजूद यूरोपीय ममालिक रूस को रूस पर पाबंदियां लगाने की तैयारी कर रहे हैं, क्यों?
जी ये अपनी जगह एक मजाक है, यानी रूस पर पाबंदी के बारे में सोचना या इसकी धमकी देना ये एक मजाक के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। इस बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि इस अगर ये सैंक्शंस वो लगाते हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं कि अगर क्रीमिया रूस के साथ जाता है तो हम रूस के खिलाफ सैंक्शंस लगाएंगे, तो सबसे ज़्यादा नुकसान यूरोप को होगा। सबसे और इमीडिएट जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं वो गैस के हवाले से और बाकी जो उनके साथ तिजारती मामलात हैं यूरोप के, वो सारे खटाई में जाएंगे और नुकसान यूरोप का होगा। इसी वजह से जो जर्मन चांसलर हैं उन्होंने इस पे अपने खदशात का इजहार किया है कि सैंक्शंस जो हैं वो अभी सोचना चाहिए और नहीं लगाने चाहिए। और यूं भी हमने देखा कि जहां भी सैंक्शंस लगी हैं वो काउंटर प्रोडक्टिव थी, उन्होंने कभी भी वो हदफ ये सैंक्शन लगा के जो आलमी साम्राज्य है वो हासिल नहीं कर सका। ये सिर्फ़ एक धमकी है और धमकी के नतीजे में अगर वो लगा भी देते हैं तो उसके नतीजे में नुकसान यूरोप का है, अमेरिका का है। और इसके साथ साथ एक और भी पहलू है समझने का कि अगर इस तरह के मामला चल पड़े और फ़र्ज़ कीजिए जिसका इशारा हल्का सा नज़र आया था कि चीन अगर अपने बॉन्ड्स वापस मांग ले तो अमेरिका तो बजाय खुद एक बैंकरप्ट कंट्री है, उसकी इकॉनमी टोटल कोलैप्स कर जाएगी सिर्फ इस ऐलान के साथ ही। और यूरोप ने भी जो यहाँ की मीशत हैं बिलखसूस फ्रांस और बरतानिया की, ये बहुत फ्रजाइल हैं, ये अभी तक अपने स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पर इकॉनमीज जो हैं ये नहीं चल रही। 4-5 साल पहले हमने सब ने देखा कि जो दुनिया का इकोनॉमिक सिस्टम, दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर गया था इसलिए कि इनके अपने जो इकोनॉमीज़ हैं उसकी कोई रूट्स नहीं है, तो सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाएगी और सफ़र करने वाले यूरोप के ही ममालिक होंगे और बिलखसूस अमेरिका पे भी उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और फिर ये जो जंगें हैं, ये जंगें वहाँ की जो रूलिंग क्लासेस या वो लोग जो जंगों से फ़ायदा उठाते हैं, असले के सौदागर हैं या तेल के सौदागर हैं, उनको तो फ़ायदा पहुंचता है मगर सफ़र करने वाले तो यूरोप के अवाम हैं और अमेरिका के अवाम हैं जो इन जंगों की कीमतें अदा करते हैं। ये जो $3 trillion की कर्ज़ा लेकर जो इराक जंग लड़ी गई थी, आज तक दुनिया कैपिटलिस्ट वर्ल्ड उससे बाहर नहीं निकल पाई और उसमें फंसी हुई है और आम आदमी जो है वो उसकी प्राइस पे कर रहा है। तो जो नुकसानात हैं वो तो बहुत दूर तक जाएंगे और यूरोप के होंगे। रूस को तो वो सेल्फ सफिशिएंट है, उनकी अपनी इकोनॉमी सेल्फ जनरेटिंग है और उनकी बहुत सी टेक्नोलॉजी से लेके और उनकी जो एनर्जी तक है उनकी अपने यहाँ उसकी फरावानी है। तो मैं नहीं समझता कि ये सैंक्शंस रूस पे कोई असरअंदाज होंगी। इसका यकीनन नुकसान, जैसे आपने कहा, फैजी साहब ने भी जिस तरफ इशारा किया, ये नुकसान यूरोप का होगा, रूस का नहीं होगा।
जी फैजी साहब, आप क्या कहते हैं, पाबंदियां लगने की सूरत में अगर रूस ने जवाबी इकदाम किया तो यकीनन यूरोप को इसका नुकसान पहुंचेगा? जर्मन चांसलर ने इसका एतराफ़ किया है। यूरोप के दो बड़े ममालिक फ्रांस और जर्मनी, ये बराह रास्त रूस के जवाबी इकदाम से मुतासिर हो सकते हैं। तो यूरोप अमरीकी मफाद के लिए क्या इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त करने के लिए तैयार होगा, इस हद तक जाएगा?
मेरे ख़्याल से जर्मन चांसलर का जो बयान है उससे ये समझ लेना चाहिए कि कम से कम उन्हें तो ये एहसास है कि जिस फ्रेजाइल इकोनॉमी को लेकर इस वक्त यूरोपीय यूनियन के ममालिक हैं, यानी मई 2008 में जो ग्लोबल रिसेशन आलमी का साथ बाजारी शुरू हुई थी, उससे अभी भी यूरोप बाहर नहीं निकल सका है। और बहुत से यूरोपीय ममालिक आज भी अपनी तवानाई के लिए रूस पर इन्हसार करते हैं, और अगर पाबंदी लगाई गई तो इस पाबंदी की सीधी मार कम से कम यूरोपीय यूनियन के 27 में से 18 मुल्कों पर पड़ेगी, जिसमें फ्रांस सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा। ऐसी हालत में मैं तो अमेरिका की इस तहदीदात आयत करने की बात को एक खोखली धमकी मानता हूँ, इसलिए कि यूरोपीय यूनियन के ममालिक अपनी तबाह होती हुई मईशत को इससे ज़्यादा सख्त बोहरान के लिए तैयार नहीं पाएंगे, और वो यकीनन इसे कबूल नहीं करेंगे।
जी फैजी साहब, इस बात का कितना इम्कान है कि यूक्रेन अमेरिका और रूस के बराह रास्त तसादुम का मैदान बन जाए?
मेरे ख़्याल से इस इम्कान को यकसर मुस्तरद तो नहीं किया जा सकता, हालांकि इसमें बहुत से इफ़ एंड बट्स लगाए जा सकते हैं
जी,
क्योंकि अमेरिका को भी इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है, जो बिल्कुल वाज़े है ऐसी हालत में। लेकिन अगर जिस माशी बहरान से इस वक्त यूरोपीय यूनियन के ममालिक गुज़र रहे हैं, खुद जैदी साहब ने जिस तरह से कहा कि अमेरिका की दिवालिया मईशत एक मामूली से चीनी ऐलान से गिर सकती है, तबाह हो सकती है, तो ऐसी हालत में वो बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका का इस वक्त का हदफ, अमेरिकी हुक्मरानों का और ख़ास तौर से जो वहाँ का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, उसका हदफ ये है कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जितना ज़्यादा मुमकिन हो सके कशीदगी पैदा की जाए, ताकि वो अपनी मईशत को दोबारा खड़ा कर सकें। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को बहाल किए बगैर ये मुमकिन नहीं है, लेकिन रूस से टकराव की सूरत में मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का ये ख्वाब शायद पूरा ना हो, इसलिए कि ना सिर्फ माशी तौर पर वो खुद कफील है, बल्कि शायद अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए वो सारिफ की हैसियत नहीं रखता है, बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में वो खुद अपने हथियार और दूसरी चीज़ें बेचता है। ऐसी हालत में यूक्रेन को जंग का मैदान बनाने का मतलब होगा कि इस कश्मकश को सारे यूरोप में फैला दिया जाए, और मैं नहीं समझता कि अमेरिका का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स इतना ज़्यादा बड़ा ख़तरा मोल ले सकता है। हो सकता है कि कुछ अरसे बाद वो दुनिया के किसी और हिस्से में, ख़ासतौर से मग़रबी एशिया में और जनूबी एशिया में कोई नया मैदान तैयार कर लें, कोई नई कशीदगी की जगह पैदा कर लें, जहाँ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को अपनी बाहरनी का कोई मौका मिल जाए।
बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, डॉक्टर कंदील अब्बास से टेलीफोन लाइन के ज़रिए राबता बरकरार हुआ, स्काइप के ज़रिए राबता बरकरार नहीं हो सका है। कंदील अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम। ڈاکٹر قندیل صاحب نے ٹیلی فون لائن کے ذریعے بھی رابطہ برقرار نہیں ہو سکا یا برقرار ہوا تھا تو رابطہ منقطع ہو گیا ہے. زیدی صاحب, جناب یوکرین کے لیے
جی
اور لوگوں نے بھی کہا ہے اور آپ نے بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ سارا مسئلہ جو ہے شام سے ریلیٹڈ ہے کہ شام میں امریکہ نے روس کو پیچھے ہٹانا چاہا اس کے موقف سے, جب وہ پیچھے نہیں ہٹا تو یہ یوکرین کا مسئلہ انہوں نے کھڑا کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوکرین کا بحران کیا اس بات کا باعث بنے گا کہ شام کے محاذ پر روس کی جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہو جائے یا تبدیل ہو جائے؟
جی نہیں, میں نہیں سمجھتا. اور روس جو ہے وہ یوکرین پہ بھی اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس سے وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے, کیونکہ اگر یوکرین میں امریکہ وہ مقصد حاصل کر لیتا ہے تو پھر روس کی پسپائی ہوگی, اور وہ یعنی یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا کہ یوکرین بالکل یورپ اور امریکہ کی گود میں چلا جائے. روس اس کو الاؤ نہیں کرے گا. اسی طرح سے جو امریکہ اور یورپ ہے وہ بھی نہیں چاہے گا کہ یوکرین بالکل روس کے ساتھ چلا جائے. اس ساری صورت میں ایک ٹینشن ڈیولپ ہوئی ہے اور یہ بڑھے گی, اور اس ٹینشن کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ممکن کہ جو روس کی فارن پالیسی ہے جو مڈل ایسٹ میں یا لیٹن امریکہ میں, کہ وہ اس امریکی یا یورپین دباؤ کی وجہ سے وہ اپنی فارن پالیسی ٹورڈز سیریا یا دوسرے اور جو ممالک ہیں ان پہ وہ کوئی تبدیلی لائیں. یہ اگر ہونا ہوتا تو پھر تو پوٹن بہت پہلے مان چکے ہوتے اور امریکہ کا ساتھ دے دیا ہوتا, اور اس وقت سیریا پر حملہ برطانیہ اور امریکہ جو اور نیٹو کرنا چاہ رہے تھے وہ ہو چکا ہوتا. تو یہ تو نہیں ہونے والا. اور اس میں ایک اور فیکٹر بھی بہت اہم ہے, وہ ہے چائنا کا. چین بھی اس وقت دنیا میں چیزوں کو لوز نہیں رکھنے چاہے گا, یا اس پہ چین کی بھی ہر دنیا پہ جو بھی ڈیولپمنٹ پولیٹیکل ہیں اس پہ چین کی بھی نظریں ہیں اور اس کا بھی مفاد ہے. تو اس وقت امریکہ یورپ کا اپنا ایک مفاد یوکرین میں ہے جو کہ روس کے اگینسٹ ہے, روس کا مفاد یوکرین میں ہے جو کہ یورپ کے اگینسٹ ہے اور اپنے تحفظ کے لیے ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ جو ایسٹ یورپ کو توڑا گیا تھا اور اس کے بعد وہاں جو حکومتیں آئیں اور جمہوریت کی لہر چلی اور جمہوری حکومتیں وہاں قائم کی گئیں, وہ سب کچھ ڈلیور نہیں کر سکیں جو کہ وہاں کے عوام چاہتے تھے. وہاں کے عوام, اول تو میں چونکہ بہت عرصہ اس سارے علاقے میں رہا ہوں, وہاں کے عوام سوشلزم کے خلاف نہیں تھے. وہاں کی جو ڈکٹیٹرشپ یا حکمرانی کی جو حکومتوں کی حکمرانی کا انداز تھا اس کے خلاف تھے. بہرحال وہ اس کو ایکسپلائٹ کر کے ان ملکوں کو توڑا گیا, اور وہاں کا عام آدمی جو توقع کر رہا تھا کہ جمہوریت کے نتیجے میں ہر ایک کے پاس مرسیڈیز آ جائے گی, ہر ایک کے پاس بہت بڑا محل ہوگا جو فلموں میں وہ دیکھتے تھے, وہ سب جب اچیو نہیں ہوا اور جو کچھ ان کے پاس تھا, فل امپلائمنٹ تھی, پوری ہیلتھ سروس تھی, ایجوکیشن فری تھی, وہ ساری سہولتیں جو تھیں وہ سب ان سے چلی گئیں, اور اس کے بعد وہ حاصل نہیں ہوا جو وہ چاہتے تھے. تو اب ٹرینڈ پورے ایسٹ یورپ میں یہ بن رہا ہے کہ وہ واپس جانا چاہتے ہیں. وہ واپس جانے کا مطلب ہے کہ ٹورڈز مارکسزم. مارکسزم کا مطلب ہے روس کی جانب. تو اگر ایسٹ یورپ میں یہ لہر جو آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے, اگر وہ روس کے ساتھ سب جڑنا چاہتے ہیں تو امریکہ کے لیے یہ پہلو بھی, اور اس کا اشارہ امریکن دو چار جو جنرلز ہیں چھپنے والے اس میں انہوں نے اشارہ کیا تھا کہ روس کے حق میں ایسٹ یورپ میں ممالک میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کے حق میں ہے, اور کیپٹلسٹ اکانومیز کو سوچنا چاہیے. تو یوکرین سمپل ایسے نہیں ہے. امریکہ یورپ वहाँ बैठ के नाटो को भी उसका मेंबर बना के वहाँ नाटो फौज भी रखना चाहते हैं, और मुस्तकबिल में जो ईस्ट यूरोप की लहर है दोबारा वापस रूस की तरफ देखने की, उस पे भी वो एक कदगन लगाना चाहते हैं फिजिकली वहाँ बैठकर।
बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जैदी साहब। जी फैजी साहब, हमारे पास एक ढाई मिनट का वक्त रह गया है। यूक्रेन के ताल्लुक से अमेरिका और रूस के तसादुम का आलमी हालात पर क्या असर पड़ सकता है?
देखिए, रूस और अमेरिका शायद सीरिया के बाद पहली मर्तबा किसी एक मसले पर बराह रास्त आमने सामने हैं, वरना सोवियत यूनियन के बिखराव के बाद रूस में जो भी हुकूमतें रहीं वो एक तरह से अमरीकी नुक्ते नज़र की दरपर्दा ही सही हिमायत करती रही थी
जी।
जिसके बाद ये कहा जाने लगा था कि सर्द जंग का दौर कभी ख़त्म हो चुका, लेकिन जैसे जैदी साहब ने मशरिकी यूरोप के कुछ ममालिक के ताल्लुक से कहा, शायद उससे ज़्यादा लैटिनी अमेरिका में और दुनिया के कुछ दूसरे हिस्सों में हम उसी माहौल की तरफ लौट रहे हैं, उन्हीं तरीके अंदाज़े हुक्मरानी की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे हैं जो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। वो मशरिकी यूरोप के मुल्कों के जवाल को जमहूरियत का खाक इतना ही नाम दे दे, लेकिन माशी तौर पर अवाम अब ये अंदाज़ा करने लगे हैं कि वो आज़ादी नहीं बल्कि एक तरह से हमें जो कुछ हासिल था उसको छीन लेने की तहरीक थी। तो ऐसी हालत में मैं समझता हूँ कि बराह रास्त तसादुम ना हो भी तो भी हम एक मरतबा फिर सर्द जंग के दौर की तरफ लौट रहे हैं। कोल्ड वॉर इज़ बैक।
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली जाफर जैदी के भी हम शुक्रगुजार हैं। दोनों तजिया निगारों के, शमीम फैजी और अली जाफर जैदी, दोनों के ख्यालात आपने मुलाहिज़ा फरमाए। बहरहाल यूक्रेन के हवाले से रूस और मगरिब का जो तसादुम है वो शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। करीमिया के बारे में तो कल फैसला हो जाएगा, बाकी यूक्रेन के जो बकिया हिस्सा रह जाएगा जो यूक्रेन के पास, उसके हालात भी बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ख़ास तौर पर जुनूबी और मशरक़ी इलाके जो यूक्रेन के हैं वो बदमनी का शिकार हो रहे हैं, और जैसा कि शमीम फैजी साहब ने कहा है कि मुमकिन है कि अमेरिका और रूस के दरमियान बराह रास्त तसादुम ना हो लेकिन सर्द जंग का ज़माना यकीनन वापस आ रहा है। प्रोग्राम के बारे में हमें आपकी राय का भी इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा।